अभिमान जी का दिल अजीब सा हो गया था, उनकी आंखें भर आई थीं। वो भावुक होकर बोले, लेकिन बेटा मैं कैसे? तभी बाकी सभी लड़कियां भी आगे बढ़कर अभिमान जी के पास आईं। उन्होंने उनका हाथ थामते हुए बड़े प्यार से कहा, पिताजी आपको किसी भी बात की परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई चिंता करने की। बस आपको हमें हाँ कहना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे, आप बस देखते जाइए। फिर आस्था ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ आगे कहा, और देखिएगा आज पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि ससुर के लिए बहुएं सास लेकर आएंगी और ससुर की बारात भी बहुएं ही लेकर जाएंगी। जैसे ही आस्था और बाकी लड़कियों ने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वैसे भी अरमान अब वसुंधरा और वीर को पूरे दिल से माफ कर चुका था, आखिरकार उसने अच्छी तरह से उन्हें सजा भी दे दी थी, साथ ही साथ उनकी गलतियों का एहसास भी करवा चुका था। अब किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी और वे लोग पूरी तरह से वफादार हो चुके थे। फिलहाल जैसे ही सब लोगों ने ये बात सुनी, अभिमान जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सभी लड़कियों से कहा था, अगर मेरी बहुएं मेरे साथ चलकर मेरी बारात में जाने को तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। जैसे ही अभिमान जी ने ये कहा, अचानक सभी लड़कियां खुशी से उनके गले से लग गई थीं। वहीं दादाजी तुरंत आकर आस्था और बाकी सब लड़कियों के सिर पर हाथ रखते हुए बोले थे, जीते रहो मेरी बच्चियों, जीते रहो। तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो मैं कितने दिनों से करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये नालायक मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। पर मेरी बच्चियों ने पूरी तरह से वो कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। अब ये सुनकर कहीं ना कहीं सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वहीं आज एक बार फिर से घर में खुशियों का माहौल देखकर सभी का चेहरा एक अलग ही सुकून और संतुष्टि से भरा हुआ था। फिलहाल तभी अचानक अरमान के पास एक अजीब सा सिग्नल बजने लगा और सभी का ध्यान अरमान की ओर चला गया। अरमान ने अपना चेहरा तुरंत ही गंभीर कर लिया। उसका चेहरा डार्क होते ही आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान हमेशा की तरह उसके पीछे जाकर खड़े हो गए, मानो कोई राजा सामने खड़ा हो और उसके चार हैंडसम डैशिंग बॉडीगार्ड उसके पीछे मौजूद हों। फिलहाल अरमान ने सभी लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, आज का दिन बहुत ज्यादा थकावट भरा था, सबसे पहले आप सब लोग खुद को डॉक्टर को दिखाइए। मैं अभी डॉक्टर को मेंशन में भेज रहा हूँ, सभी लोग ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है? आकाश और ध्रुव आप सबका ट्रीटमेंट चेक करेंगे, किसी को भी किसी तरह की परेशानी हो तो तुरंत बताया जाए, सभी लोग अच्छे से आराम करेंगे, बाकी सब कल देखेंगे। फिर अरमान ने मनोज जी की ओर देखा और कहा, और मामा जी? आज पहली बार अरमान ने मिस्टर मेहता की जगह मामा जी कहकर पुकारा था। मनोज जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि वो शुरू से ही अरमान से डरते आए थे, लेकिन आज उसके मुंह से अपने लिए मामा जी सुनकर वो भावुक हो गए थे। उन्होंने धीमे से कहा, क्या कहा तुमने बेटा, मामा जी? लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने इमोशंस को अंदर ही दबा लिया। तभी अरमान उनके पास जाकर बोला, आप लोग अभी कहीं नहीं जाएंगे, जब तक राजवीर और सम्राट का मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को यहां से जाने की इजाजत नहीं है। अरमान ने सख्त शब्दों में ये कहा और फिर बिना कुछ बोले सभी लड़कों को साथ लेकर सीधे तहखाने की ओर चला गया, क्योंकि जो इमरजेंसी अलार्म आया था वो तहखाने की ओर से ही आया था। अब जैसे ही अरमान वहां पहुंचा, डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद थे। अरमान को देखते ही डॉक्टर बोले, सर राजवीर की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है, हमें नहीं लगता कि हम उसे ज्यादा देर तक बचा पाएंगे। हमने पहले ही मेजर सर्जरी कर दी है, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है, ऐसी सिचुएशन में उसे बचा पाना बेहद मुश्किल है। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, अरमान का चेहरा और सख्त हो गया। उसने पहले ही डॉक्टर को सख्त निर्देश दिए थे कि इन लोगों की जान अभी नहीं जानी चाहिए, इनकी मौत तभी होगी जब अरमान चाहेगा। अब अरमान ने घायल पड़े हुए राजवीर की ओर देखा, फिर एक नजर सम्राट की ओर डाली, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना डॉक्टर, ब्लड का इंतजाम करो, अभी वक्त नहीं आया है राजवीर जिंदल की जान जाने का। वैसे भी अरमान सिन्हानिया की यादों के साथ छेड़छाड़ की थी उसने, मेरी जिंदगी के अनमोल दिन ही इसने मुझसे छीन लिए थे, जो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, मेरी आस्था, उसे उसने मुझसे भुला दिया था। इतनी आसानी से मैं इसे मरने भी नहीं दूंगा, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद ले लो, लेकिन राजवीर जिंदल को बचाओ। अरमान ने जैसे ही डार्क आवाज में ये कहा, अचानक से सभी के चेहरे पर पसीना आ गया था, क्योंकि इस वक्त उसका गुस्सा और उसका प्यार दोनों ही बेहद खतरनाक रूप ले चुके थे। वहीं सम्राट भले ही उस वक्त पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन अरमान की बातें अनकॉन्शियस हालत में भी उसके कानों तक साफ साफ पहुंच रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आने की कोशिश जरूर हो रही थी, लेकिन लड़कों ने मिलकर उसका जो हाल किया था उसकी वजह से वो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। फिलहाल अरमान सीधा सम्राट के पास गया और उसे घूरते हुए बोला, तुम जानते हो सम्राट, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था,
अमरेश रायचंद को मेरी जिंदगी में भेजने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुमसे गलती कहाँ हुई जानते हो? वो थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पहले तुम सिर्फ दूर से ही मुझ पर नजर रखते थे, लेकिन मेरी दुनिया के बारे में सोचकर तुमने अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बीवी को पूरी दुनिया में खोजोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जैसे ही अरमान ने इस तरह से सम्राट से बातें करनी शुरू की, सम्राट के चेहरे का वो हरामीपन जरा भी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसे जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो तो सिर्फ राजवीर जैसे पागल इंसान के मुंह से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सुनना चाहता था, और वही उसके लिए सबसे बड़ी उपाधि थी। लेकिन अब राजवीर खुद ही मौत के किनारे पहुंच चुका था, और वो सम्राट को अरमान से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कह भी नहीं पाया था। ये सब देखकर आहान थोड़ी घबराहट के साथ बोला था, भाई ये तो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, फिर भी इसके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हो रही। आखिर ये लोग हैं कौन? इतने पागल लोग तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। कोई एक सनकी इंसान ऐसे सनकी लोगों के साथ कैसे रह सकता है? आहान की बातें सुनकर एक पल के लिए अरमान का चेहरा थोड़ा मुरझा गया था। आखिरकार सम्राट और राजवीर जैसे लोगों की बात हो रही थी, और कभी न कभी अरमान भी तो उन्हीं में से एक था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो आस्था की मोहब्बत में पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन एक समय था जब वो भी उसी अंधेरे रास्ते पर जी रहा था। उस वक्त अरमान के लिए इमोशंस का कोई मतलब नहीं हुआ करता था, किसी के जज्बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वो बिल्कुल हिटलर टाइप इंसान बन चुका था, जो सिर्फ वही करता था जो वो चाहता था। उसने कभी किसी के इमोशंस की कदर नहीं की, अगर उसने कुछ सोचा भी तो बस लोगों की बेरहमी से जान लेने के बारे में ही। कहीं ना कहीं आज अरमान को अपनी की हुई एक एक गलती का पूरी तरह से एहसास हो रहा था, और सबसे ज्यादा अगर उसे किसी बात का पछतावा था तो वो था अपने बचपन में वंशिका के भाई की बेरहमी से की गई हत्या। ये याद आते ही अरमान को खुद से ही एक अजीब सी घृणा महसूस होने लगी थी। आखिरकार आज सम्राट और राजवीर जिस हालत में थे, अगर अरमान आस्था की मोहब्बत में बदल नहीं जाता तो शायद आज उसकी भी यही हालत होती, क्योंकि अरमान तो उन दोनों से भी ज्यादा बहरम हुआ करता था। यही एक कारण था कि आज तक राजवीर हमेशा अरमान को ही अपना सबसे खतरनाक खिलाड़ी कहता रहा था, क्योंकि अरमान जैसा संकीपन तो आज तक सम्राट में भी पैदा नहीं हुआ था।
कहीं ना कहीं आज अरमान को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। भले ही आहान ने बातें किसी और अंदाज में कही थी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि अरमान भी कभी उन्हीं लोगों में से एक था। इस वक्त अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर रखी थीं, और एक एक करके उसकी जिंदगी के वो सारे पल उसकी आंखों के सामने आने लगे थे, जब उसने बेरहमी से मर्डर किए थे, जब उसने लोगों की जिंदगी पर राज किया था। हालांकि अरमान ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा था कि कोई भी बेगुनाह उसके हाथों से ना मरे, लेकिन जब भी डेविल सिंघानिया का वो खतरनाक रूप जागता था, तब उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। वो पूरी तरह एक खतरनाक डेविल बन जाया करता था, इसीलिए मौत भी उसके नाम से कांपती थी। तभी ध्रुव ने अरमान के चेहरे के भाव देखकर कुछ पल के लिए सोचा। आखिरकार ध्रुव हमेशा से ही अरमान को अच्छे से हैंडल करता आया था और उसकी हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझता था। इस वक्त भी वो समझ चुका था कि अरमान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा। फिलहाल उसने जल्दी से आहान के कंधे पर हाथ रखा। आहान ने सवालिया नजरों से ध्रुव की ओर देखा, लेकिन वो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया। तभी ध्रुव उसके कानों के बेहद करीब गया और धीमे स्वर में उसे कुछ समझाने लगा। अचानक ध्रुव की बात सुनकर आहान ने तुरंत अरमान की ओर देखा और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो मन ही मन बोला, हे कान्हा जी, आज बचा लेना, पता नहीं मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर देता हूँ। क्यों चुप नहीं रहता? जहाँ मुझे बोलना नहीं होता वहीं मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं इस वक्त अरमान भैया बेचारे क्या सोच रहे होंगे। फिलहाल आहान की हालत देखकर ध्रुव ने जल्दी से दो बार उसके कंधे को दबाया, मानो उसे समझा रहा हो कि अब पछताने का समय नहीं है, बल्कि बात संभालने का वक्त है। ध्रुव की बातों का मतलब समझकर आहान ने खुद को संभाला और जल्दी से बात संभालते हुए बोला, भाई ये लोग तो एक नंबर के पागल हैं, कहाँ आप और कहाँ ये। आपको खुद से इनकी तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जैसे स्वीट, केयरिंग और लवली भाई इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप तो जानते हैं ना भैया, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप शुरू से ही इनसे अलग थे, आप इनकी दुनिया का हिस्सा कभी थे ही नहीं। अरमान भाई, प्लीज़ आप इनकी और इनके बारे में किसी भी तरह की बातों को लेकर कुछ भी गलत मत सोचिए। मैं तो पागल हूँ, एक नंबर का गधा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। प्लीज़ अरमान भाई, आप शांत हो जाइए। कहीं ना कहीं डरते हुए आहान ने आगे बढ़कर अरमान का हाथ पकड़ लिया था। वहीं आकाश और सुमित खामोशी से ये पूरा दृश्य देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि इस वक्त दोनों ने जो आहान को समझाया है उसी के अनुसार वो बात कर रहा था, क्योंकि अरमान भले ही अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन ये भी सच था कि किसी इंसान की फितरत को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं सभी को आहान के लिए हल्का सा डर भी लग रहा था कि कहीं अरमान को उसकी कोई बात बुरी ना लग जाए और वो गुस्से में आकर आहान के साथ कुछ गलत ना कर बैठे।
वहीं सम्राट, जो ये सारी बातें सुन रहा था, धीरे धीरे मुस्कुराने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके इस हरकत को देखकर सभी का खून खौल रहा था, लेकिन फिलहाल आहान को इस तरह घबराते देखकर ध्रुव भी आगे बढ़ा और अरमान के पास जाकर बोला, अरमान भाई, आहान का कहने का वो मतलब नहीं था। हमें पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी बात को गहराई से नहीं सोचेंगे। नहीं, आहान ने रोने वाली शक्ल बना ली थी और बोला था, माफ कर दीजिए भाई। फिलहाल आहान की बातें सुनकर अरमान ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मानो वो कह रहा हो, फिक्र मत कर, मैंने तेरी बातों का बुरा नहीं माना। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तू कब से मुझे इतना डरने लग गया? जहां तक मुझे पता है, तू तो मेरे साथ मजाक तक करता है, तो इतना घबराने की क्या जरूरत है? जैसे ही माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अरमान ने अपने शब्दों में नरमी और अपनापन दिखाया, सभी के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं आहान ने गहरी सांस ली और ध्रुव की ओर देखने लगा। वो मन ही मन बोला, तूने तो मुझे इतना डरा दिया था, मानो मैंने पता नहीं क्या बोल दिया और अरमान भाई मेरा काम तमाम कर देंगे। खैर, अरमान भाई की मुस्कुराहट देखकर अब जाकर मुझे चैन आया है। इसके बाद आहान पूरी तरह से सहज हो गया और अगले ही पल आहान फिर से बोला, और भैया, ये बात बुरा मानने वाली भी नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ, आप इन जैसे बिल्कुल भी नहीं थे और ना कभी हो सकते हैं। ये लोग तो इंसान ही नहीं है, इनफैक्ट इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। अब आहान को इतना भावुक होता देखकर अरमान ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वहीं ध्रुव भी बोला था, आहान जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये अरमान भाई वो हैं ही नहीं जो कभी हुआ करते थे। फिलहाल अब डॉक्टर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके थे, क्योंकि अरमान ने साफ साफ कह दिया था कि राजवीर की जान नहीं जानी चाहिए और डॉक्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी बात को नजरअंदाज कर सकें। इसलिए उन्होंने तुरंत ही जितना हो सकता था उतनी तेजी से इलाज शुरू कर दिया। ब्लड का इंतजाम किया जाने लगा और हर संभव कोशिश की जाने लगी कि राजवीर को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि इस वक्त राजवीर की जिंदगी बेहद कीमती थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो ना जाने अरमान सिंघानिया का गुस्सा किस पर टूट पड़ता। और यही सोचकर सबने बिना एक पल गवाए उसका इलाज शुरू कर दिया। आखिर क्यों अरमान राजवीर को जिंदा करना चाहता है, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए तेरे इश्क में।